ഹരി കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ചാപ്റ്റർ 5 ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 21. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ കെ മുഖാർവിന്ദ് സെ നിക്ലേ ഹുയേ ഇൻ അത്യന്ത് ഹീ പവിത്ര ശബ്ദോ കോ മേരെ സാത് സാത് ഉച്ചാരണ കീജിയേ. ഭഗവാൻ കേത്തേ ഹേ ബാഹ്യ സ്പർശേഷ്വ സത്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം സ ബ്രഹ്മ യോഗ യുക്താത്മാ സുഖം അക്ഷയം അശ്നുതേ. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വ സത്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം സ ബ്രഹ്മ യോഗ യുക്താത്മാ സുഖം അക്ഷയം അശ്നുതേ. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വ സത്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം സ ബ്രഹ്മ യോഗ യുക്താത്മാ ത്മാ സുഖം അക്ഷയമശ്നുതേ. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വ സത്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗ യുക്താത്മാ സുഖം അക്ഷയമശ്നുതേ. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വ സത്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗ യുക്താത്മാ സുഖം അക്ഷയമശ്നുതേ. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വ സത്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗ യുക്താത്മാ സുഖം അക്ഷയമശ്നുതേ. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വ സത്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗ യുക്താത്മാ സുഖം അക്ഷയമശ്നുതേ. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വ സത്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗ യുക്താത്മാ സുഖം അക്ഷയമശ്നുതേ.
ശബ്ദോകാർത്ത് ബാഹ്യസ്പർശേഷു अर्थात बाह्य इंद्रिय सुख में असक्त आत्मा अनासक्त पुरुष विंदति भोग करता है. आत्मनि अर्थात आत्मा में यत जो सुखम सुख स वह ब्रह्म योग ब्रह्म में एकाग्रता द्वारा युक्त आत्मा अर्थात आत्मयुक्त या समाहित सुखम अर्थात सुख अक्षयम असीम अश्नुते अर्थात भोगता है. अनुवाद: ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है. इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यामोनाचार्य ने कहा है, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नवरस धामन्युध्यतं रमन्तुमासीत् तदवधि बतनारि संगमे स्मर्यमाने भवती मुखविकारः सुष्ठुनिष्ठीवनं च. अर्थात जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने में लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं. ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है, और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर पाते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपरान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुति देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भागवत भगवद्गीता मात की जय। आज भगवान अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। ये श्लोक हम बहुत ही सुंदर है, स्पेशली हम जो साधक हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान इसमें बता रहे हैं कि एक साधक को किस तरह से आत्मा के पहले भौतिक शरीर से आत्मा के लेवल पे आना है, और आत्मा से किस तरह से ब्रह्म सुख यानी भगवान के साथ अपने ब्रह्म योग युक्त आत्मा, भगवान ने एक शब्द बताया है, आत्मा की पहले आत्मा की स्टेज पर आपको स्थिर रहना है और फिर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है। ये कैसे करना है ये भगवान ने ग्रेजुअली इस श्लोक में क्रम से बताया है और अत्यंत ही सुंदर तरीके से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान ने कहा बाह्य स्पर्शेश्व सक्त आत्मा, यानी बाह्य का मतलब होता है ये जो हमारी बाह्य से इंद्रियां है ना उनका सुख। बाह्य स्पर्श का मतलब होता है इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों की आपस में अटैचमेंट। वास्तव में भक्तों इस भौतिक संसार में जो भी आनंद हमें मिलता है वो केवल बाह्य स्पर्श ही है, केवल इंद्रियों और उनके विषयों की आपस में आसक्ति के कारण मिलता है। तो इन भौतिक वस्तुओं का जब इंद्रियों के साथ समागम होता है, यानी जैसे जैसे हमारी बहुत इंद्रियां कौन सी हैं, ज्ञान इंद्रियों को अगर हम लेते हैं आंख कान नाक त्वचा रसना, तो फिर उनकी जब विषय उनको प्राप्त होते हैं जैसे आंख को दृश्य, कान को शब्द और मुख को यानी जिह्वा को टेस्ट और इन हमारी त्वचा को स्पर्श जो प्राप्त होता है तो उसके द्वारा हम आनंदित होते हैं, तो इसको कहते हैं बाह्य स्पर्श। परंतु जैसे ही ये भौतिक इंद्रियों के विषय अदृश्य हो जाते हैं यानी समय आता है कि हमारी इंद्रियों के इनको बाह्य स्पर्श प्राप्त नहीं होता है, विषय अदृश्य हो जाता है, तो उस समय क्या हो जाता है हमारा आनंद भी समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि बाह्य स्पर्श सक्त आत्मा, कि आत्मा जो है वो वास्तव में बाह्य स्पर्श यानी इंद्रियों के द्वारा कभी भी संतुष्ट नहीं होती है, उसके आनंद के द्वारा अनासक्त होती है, उधर से आनंद नहीं लेती है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि भले ही आत्मा हमारे हृदय के अंदर बैठी है लेकिन फिर वो आनंद तो उसको भी चाहिए, फिर वो आनंद कैसे लेगी, है ना, आनंद तो उसे चाहिए फिर वो आनंद कैसे लेगी। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं विंदती यानी भोग करता, ऐसा नहीं है कि वो अंदर बैठ के मर रहा है, भोग कर रहा है, आनंद ले रहा है, किससे, आत्मनि यानी आत्मा के अंदर ही वो आनंद दे रहा है, यत् सुखम यानी वो आत्मा जो है वो आनंदित है। ऐसा नहीं है कि उस आत्मा को किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता है, भौतिक बाह्य स्पर्श की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा में ही आनंद लेता है। और किस तरह से लेता है, स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म योग यानी ब्रह्म में एकाग्र। अब ये जो ब्रह्म लिखा होता है ना, देखो वास्तव में शास्त्रों में परम सत्य को संबोधित करने के लिए अनेक शब्द यूज होते हैं, उसमें से ब्रह्म एक शब्द है, उसका मतलब होता है परम सत्य। और जो आचार्य होते हैं जो भावार्थवाद जैसे श्री प्रभुपाद जी, तो आचार्य हमें समझाते हैं कि वास्तव में यहाँ पर जो परम सत्य के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है वो ब्रह्म के लिए इस्तेमाल हुआ है, परमात्मा के लिए या भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है। और श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमें बताया है यमुना आचार्य की एक अत्यंत ही सुंदर बात से हमें श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य समझाया कि जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति यानी ये जो ब्रह्म योग युक्त आत्मा है इसका मतलब होता है भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़ना। जब कोई जीव सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ता है सुखम अक्षयम अश्नुते, और जब कोई जीव इस भौतिक आनंद का परित्याग करके अपने आप में आनंद का अनुभव करता है, भगवान कहते हैं कि सुखम अक्षयम अश्नुते, मतलब वही वास्तविक आनंद होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है और वही परम आनंद होता है। मतलब इस संसार के निम्न आनंद की जगह वो अपने अंदर में परम आनंद प्राप्त करता। ऐसा ही एक सेम टू सेम वर्ड्स भगवान श्री कृष्ण ने बोले चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 55 में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रजहाति का मतलब होता है त्याग देते, जो त्याग देता है यदा कामान, जो अपनी इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं को त्याग देता है, सर्वान पार्थ मनोगतान, जो जो कुछ उसके मनोरथ है पार्थ, जो उसकी मन की इच्छा है इंद्र तृप्ति की मनोधर्म से जो उत्पन्न हुई है उनको त्याग देता है, आत्मनि एव आत्मान, यानी यहाँ भगवान ने कहा आत्मनि वात्मना तुष्टः, वो अपनी आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वो इतना शुद्ध हो जाता है। इंद्र तृप्ति की कामना ही हमारे हृदय को अपवित्र बनाती है, और जब इंद्र तृप्ति की कामनाओं का परित्याग हो जाता है और जब इस तरह से विशुद्ध हो जाता है तो उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। फिर वो हृदय से भौतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं करता ये आनंद, हम क्या करते हैं भौतिक वस्तुओं से आत्मा को आनंद करने आनंदित करने का एक प्लान बनाते हैं। ये प्लान जस्ट हमारी मनोधर्म है कि हम सोचते हैं मन से कि ऐसा पॉसिबल है कि हम भौतिक वस्तुओं को, जब हम अपनी भौतिक इंद्रियों को उनका दृश्य देंगे, उनका जो है ना विषय देंगे, तो फिर हम अपनी आत्मा को आनंदित कर सकेंगे। परंतु ये वो नहीं है। यहाँ पर क्या बताया गया, बाह्य स्पर्श असक्त आत्मा, आत्मा इन बाहरी चीजों से बिल्कुल भी आसक्त नहीं होती है। तो यहाँ पर भगवान हमें बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि बाह्य स्पर्श असक्त आत्मा, यानी जो व्यक्ति बाह्य स्पर्श में आनंद नहीं लेता है, भौतिक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं लेता, बल्कि विन्दति आत्मनि यत् सुखम, यानी अपने अंदर में अपनी आत्मा में ही आनंद प्राप्त करता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब वो आत्मा में आनंद प्राप्त करता है या बाहर आनंद प्राप्त करता है तो उसमें अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है? आनंद तो आनंद ही है, तो अंदर में कैसा आनंद आता है उससे, उसको भगवान ने यहाँ पर एक शब्द से डिस्क्राइब किया है कि एक ही शब्द बताया कि वो आनंद कैसा होता है, सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय का मतलब होता है, पता है अक्षय का क्या मतलब होता है, किसी का नाम भी होता है ना, अक्षय क्षय का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, जो समाप्त हो जाए, जो एंड हो जाए, और अक्षय का मतलब होता है जो कभी समाप्त न हो, अर्थात एंडलेस, मतलब उसको जो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। यहाँ पर भौतिक इंद्रियों के द्वारा वैसे तो कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अगर कोई सोच भी रहा है कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा मैं आनंदित हो रहा हूँ तो वो आनंद टेम्प्ररी है और एंड हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रेजर के बारे में बताया जा रहा है और वो कैसा है, एंडलेस अक्षय, क्योंकि हम भौतिक इंद्रियों को यदि हम सोचते हैं कि इनसे हमें आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम आत्मा की ओर सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार करके भगवान के साथ जब हम अपना योग जोड़ेंगे, क्या बताया, सहब्रह्म योग युक्त आत्मा, यानी भगवान के साथ जब अपना संबंध जोड़ेंगे तो उस समय जो आनंद प्राप्त होगा वो ब्रह्म सुख होता है, वो अक्षय सुख होता है। इस भौतिक जगत में ब्रह्म सुख प्राप्त नहीं हो सकता, यहाँ पर जो भी सुख है वो कौन सा सुख है, जड़ सुख है। वो जड़ का क्या मतलब होता है, वो जिसमें चेतना ना हो, है ना, डेड मैटर। अब हमारे मन में ऐसे सवाल आ सकता है, हम सोच सकते हैं व्हाट इज द हैप्पीनेस ऑफ डेड मैटर, जैसे ये शरीर जड़ है ना, ये शरीर तो इसके अंदर तो चेतना नहीं है, प्राण नहीं है। जैसे एक अगर कोई मृत शरीर है और अगर कोई कितना भी कितनी भी प्रयास करे, मृत शरीर को ना आनंदित किया जा सकता है और ना ही उससे आनंद प्राप्त किया जा सकता है, हाँ, वैसा उससे आनंद प्राप्त करना तो बिल्कुल असंभव है। परंतु हम यहाँ पर जो भौतिक जितने भी लोग हैं वो वैसा ही करने का प्रयास करते रहते सदैव, अब इस शरीर में तो प्राण नहीं है, प्राण किस में है? आत्मा में प्राण है ना। तो जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो मतलब समझो डेड शरीर से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो कभी भी वास्तविक आनंद नहीं है। जिसको ब्रह्म सुख बोलते हैं, आध्यात्मिक आनंद बोलते हैं, वो कैसा होता है? भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, सुखम अक्षयम अश्नुते, वो तो बिल्कुल ही अक्षय होता है। आनंद का मतलब होता है जब वो तुम्हें प्राप्त हो जाए, फिर वो प्रतिक्षण वर्धमान। ऐसा नहीं है कि वो समय ऐसा आए कि बस मैंने अभी भगवान की भक्ति का आनंद भी ले ले। कभी कभी बोलते ना, इसका आनंद, ये चीज का टेस्ट खा लिया, कर लिया, ये होटल का खा लिया मैंने, उसका भी कर लिया, नहीं ये चीज का भी रह गया, ये कर लो, फिर वो भी रह गया, खत्म हो गया। लेकिन भक्ति का आनंद ऐसा नहीं है कि कभी आप कहो कि ये मेरा मैंने टेस्ट कर लिया, नहीं। हर एक क्षण भगवान के नाम का, भगवान के गुण का, भगवान के साथ अपने संबंध का, भगवान के प्रेम का आनंद जो है वो प्रतिक्षण वर्धमान है, कोई उसकी सीमा नहीं है, अक्षय आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता। परंतु आज भगवान एक बहुत ही रहस्यमय बात बता रहे हैं, बहुत ही सीक्रेट बात है जो कि हमें समझनी पड़ेगी। कि भगवान कह रहे हैं बाह्य स्पर्शेश्व असक्त आत्मा, कि बाह्य इंद्रिय सुखों को त्यागना पड़ेगा, उनके अंदर से आसक्ति समाप्त करनी पड़ेगी, उसके बाद विन्दति आत्मनि तत् सुखम, उसी के बाद आत्मा का आनंद प्राप्त कर सकेगा। यानी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप दोनों आनंद एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोगों का ये विचार होता है कि चलो ठीक है, हम भक्ति करेंगे लेकिन भौतिक आनंद भी साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान साफ साफ कह रहे हैं बाह्य स्पर्शेश्व असक्त आत्मा विन्दत आत्मनि यत् सुखम। और श्रील प्रभुपाद जी ने अंतिम में क्या बताया है, आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी भी एक साथ नहीं चलते। यानी कि इन दोनों में से आपको एक चॉइस करना पड़ेगा, या तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा आप आनंदित हो जाओ, खाकर पहनकर घूमकर एंजॉय करके, जो भी भौतिक इंद्रियों को उनको विषय प्रदान करके आप अगर आनंदित होना चाहते हो, और दूसरा क्या है, विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, जो आत्मा से आनंद प्राप्त होता है। उन दोनों में से आपको एक, अगर आपको एक चाहिए तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। और ये अक्षय सुख है, इनमें ये डिफरेंस क्या है कि जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है वो टेम्प्ररी है, समाप्त हो जाने वाला है। और ये जो आत्मा में जो जीव आनंद प्राप्त करता है, ये अक्षय सुख है जो कभी समाप्त नहीं होता। तो इस अक्षय सुख को प्राप्त करने के लिए क्षय सुख को छोड़ना होगा। और वास्तविकता तो ये है भक्तों कि जब जीव को यह वास्तविक सुख प्राप्त हो जाता है, जो भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ के जीव सुख प्राप्त करता है, तब उसको ये भौतिक सुख सुख लगता ही नहीं है। तब जीव को ये ज्ञान हो जाता है कि भौतिक वस्तु और व्यक्ति से हम जो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं वो तो वास्तव में हमारे दुख का कारण है, हमारी समस्याओं का मूल कारण यही है कि हम इंद्रियों और इंद्रियों को संतुष्ट करके इन भौतिक वस्तु या व्यक्तियों से आनंदित होना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने यमुना जी का एक ना यमुना आचार्य जी का के विषय में लिखा हुआ है कि जब से मैं भगवान के चरणारविंद की और आकर्षित हुआ हूँ, कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लग गया हूँ, यदवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदे, जब से मेरा चित्त भगवान के चरण कमलों की ओर आकर्षित हुआ है, नव नव रस धामन युद्ध तम रमंतम आसी, तो मुझे हर एक क्षण एक अलग सा नवीन आनंद, नित्य नवीन आनंद प्राप्त हो रहा है। इतना सुख, इतना आनंद आता है भगवान के दर्शन करके, भगवान के पवित्र नाम का जप करके, भगवान के साथ कोई भी जब भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, जब भगवान के नाम की कथा, भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, जब भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं, जब भगवान को प्रसाद खिला रहे हैं, जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे नव नव रस हरि क्षण पे प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, नव नव रस धामन्युद्धितम रमन्तमासिम। मेरा मन, मेरी आत्मा इतनी आनंदित हो रही, रमन्तमासीत मतलब उतना आनंद उसको प्राप्त हो रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और फिर जब कभी भी भगवान की भक्ति करते समय तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने, कभी अगर ऐसा हो जाता है कि स्त्री के साथ संग करने का विचार भी कभी मन में आ जाता है ना, मन तो देखो भटकता है, तो कभी ऐसा विचार आ जाता है तो क्या होता है, भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठी वनम, कि मेरा मुंह ऐसे लगता है ना जैसे कोई गंदी चीज में मुंह में किसी ने डाल दी, कैसे फिर हम थूक करते हैं कि छी इतनी गंदी बात बता दी, हमें इतना अभी आनंदित, जैसे हम प्रसाद खा रहे हो बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद हो और कोई निष्ठा की बात करे तो अभी तो ऐसी गंदी बात नहीं करो ना, इतना आनंद आ रहा है इतना स्वादिष्ट प्रसाद खा रहे। तो उसी समय उसी तरह से ये कह रहे हैं यमुना आचार्य जी बता रहे हैं कि अगर कभी नारी संघ के विषय में बात भी माइंड में आ भी जाती है तो मेरा मुंह खराब हो जाता है, होंठ सुकर जाते हैं और थू करने लगता हूँ कि ये कोई इंद्रिय सुख भी कोई आनंद प्रदान करता है कभी, बल्कि वो तो मुझे उसकी सोच भी मुझे दुखी कर देती है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिक दृष्टि में सब लोग को सबसे ज्यादा आनंद जो है वो काम सुख में आता है, ये सारा संसार जो है वो इसी काम सुख की ओर ही प्रेरित होता है। जब तक किसी को काम सुख के लिए किसी को प्रेरित नहीं किया जाए तब तक कोई कार्य ही नहीं लगता। इवन यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि आप अच्छा काम करो, अच्छी मतलब अगर आप अपराध नहीं करोगे पुण्य करोगे तो क्या करोगे, फिर आप स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में क्या मिलेगा, अप्सराए मिलेंगे। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो ये सोचकर कि मैं सब स्वर्ग में जाकर अप्सराओं के साथ भोग करूंगा इसलिए पुण्य कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल देंगे क्योंकि लोग इतना आकर्षित होते हैं इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं के प्रति, इसलिए उनको लगता है कि बस जहां से ये आनंद प्राप्त नहीं होगा तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है, उसको काम सुख की प्रेरणा नहीं होती है बल्कि उसको हृदय का आनंद प्रेरणा देता है ना। दो चीजें, या तो काम सुख का आनंद कि मुझे आएगा फिर वो आप उत्साह से कार्य करो, लेकिन आत्मा का आनंद आ रहा है तो फिर व्यक्ति क्या करता है, और भी करता है, और भी मुझे भगवान के नाम का जप करना, और भी कथा श्रवण करनी, और भी सेवा करनी, और भी भक्तों का संग करना, इसमें ही तो मुझे आनंद आ रहा है। और जब ये आनंद आता है तो भौतिक सुख जो है वो बिल्कुल निगरणीय लगता है, क्योंकि जब जीव ब्रह्म सुख या आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर लेता है तो हम इस भौतिक धरातल बहुत ऊपर उड़ जाते हैं और आध्यात्मिक धरातल पर आ जाते हैं। और फिर आध्यात्मिक धरातल पर जो टेस्ट होता है वो ये आनंद कैसे प्राप्त होता है, अब उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, उस आनंद उससे जो भगवान कैसे प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यानी कि जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तब आनंदम बुद्धिवर्धनम हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और उसे यह रियलाइज होता है कि मुझे भौतिक धरातल के आनंद को नहीं ना एक्सेप्ट करना है बल्कि आध्यात्मिक, यहाँ पर लिखा ना जैसे बाह्य स्पर्श असत आत्मा विंदत्यात्मनि यत् सुखम, फिर वो भौतिक चीजों में आनंद प्राप्त होता ही नहीं क्योंकि बुद्धि शुद्ध हो रही है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो आनंद होता है वो कैसा होता है, प्रतिपदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादन, हर एक कदम पर पूर्ण अमृत का आनंद प्राप्त होता है, कंप्लीट आनंद स्वाद प्राप्त हो रहा होता है। और वो कैसे होता है, श्री कृष्ण संकीर्तनम, जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता है कि भले हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं फिर भी ये इंद्रियां तो भौतिक ही हैं, वो भी तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा ही हम कर रहे हैं ना। जैसे शब्द तो हमारे मुख से निकल रहे, तो फिर ये तो फिर है ना शब्दों के द्वारा हम आनंद ले रहे हैं, या फिर भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं, तो फिर आनंद हो। लेकिन ऐसा क्या है, भगवान का नाम इतना दिव्य है, भगवान का नाम गौण लीला इनमें कोई अंतर नहीं है, वो इतने दिव्य है कि वो जीव जो ये जीव की भले भौतिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन उनको उठा के आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाते हैं। बाकी संसार का जो भी भौतिक आनंद है वो सब भौतिक है, लेकिन भगवान का नाम गौण लीला, भगवान का कुछ भी भौतिक नहीं है, इसलिए उस भगवान के नाम गौण लीलाओं के साथ युक्त होकर, यहाँ पर लिखा हुआ ना कि सब्रह्म योग युक्त आत्मा, कि भगवान के साथ जब आत्मा के स्तर पर पहले स्थिर होंगे और भगवान के साथ अपना योग जोड़ेंगे, उसके बाद सुखम अक्षयम अश्नुते, ये सुख भौतिक सुख नहीं है, ये तो आध्यात्मिक ब्रह्म सुख है, और ये आनंद ऐसा है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, सदैव एंडलेस आनंद है। तो इस श्लोक में भगवान ने हमें तीन चीजें समझाई हैं। सबसे पहले क्या करना है, बाह्य स्पर्शेश व सक्त आत्मा, बाहरी जो भौतिक आनंद है इससे असक्त नहीं होना है, इससे अनासक्त हो जाना है, इनकी ओर आकर्षित नहीं होना है, और क्या करना है, विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, फिर जो भी सुख मिल रहा है भौतिक धरातल पर भी जो सुख मिल रहा है, आत्मा से उसको अनुभव करना, यानी भौतिक अपनी इंद्रियों को भौतिक चीजों की ओर आकर्षित नहीं करना, बल्कि आध्यात्मिक आनंद उसको प्राप्त करना, यानी जो भी प्राप्त हो रहा है भौतिक में, जो भी प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहना है, सुख प्राप्त करना है, और मतलब ये नहीं सोचना कि ये प्राप्त नहीं हो। जैसे हम लोगों ने पहले श्लोक में क्या पढ़ा था कि न प्रहिष्ये प्रियम प्राप्यम न द्विजे चाप्य अप्रियम, यानी कि अगर अच्छा मिल रहा है तो उस वो भी ओके, भगवान संतुष्ट हो, मैं आपको रसन करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, अगर मान हानि और है ना जय पराजय जो भी प्राप्त हो रहा है तो यत सुखम, और उसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद आगे बढ़ना है, रुकना नहीं उस पे, सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, फिर आपको भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना है, उसके बाद जो आनंद प्राप्त होगा वो क्या होगा, सुखम अक्षयम अश्नुते, वो ऐसा आनंद होगा जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं गुरु और गौरंग को प्रसन्न करने के लिए अच्छी सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण।